शांति। स्वोन्नति का साधन याद का चार्ट लिखना। मुरली में बाबा कई बार हमें इशारा दे चुके हैं, अगर इस ज्ञान मार्ग में आकर बहुत अच्छी उन्नति करना चाहते हैं तो याद का चार्ट लिखते चलो। चार्ट लिखने से पहला लाभ ये होता है, मन और बुद्धि के द्वारा कितनी हमारी कमाई अविनाशी हुई है इसका हमें पता चलता है। दूसरी बात, याद का चार्ट लिखने से मन और बुद्धि जो सूक्ष्म शक्तियां हैं उन पर नियंत्रण और शासन करने की कला हमें प्राप्त होती है। लोगों ने कहा है मन को कंट्रोल करना बहुत कठिन है, लेकिन ये चार्ट हमें सिखाता है मन और बुद्धि पर पूर्णतया नियंत्रण और अनुशासन कैसे करें, ये कला हमें प्रदान करता है। तीसरी बात, मन और बुद्धि को सारे दिन भर में बिजी कैसे रखें और डिसिप्लिन में कैसे रखें, ये कला भी हमें चार्ट लिखने से प्राप्त होती है। इसलिए कहते हैं चार्ट्स मेक्स यू स्मार्ट, चार्ट आत्मा को स्मार्ट बनाता है, क्योंकि द्वापर युग से हमारा मन और बुद्धि हमारे कंट्रोल में नहीं था। माया के संग में आकर इधर उधर भागता रहा और हमारे पास जो भी खजाने थे, जो भी अलौकिक प्रॉपर्टी थी, वो सारी हमें गवा दी, हमें कंगाल बना दिया। फिर चार्ट रखने से सर्वशक्तिवान परमात्मा से अथाह शक्तियां हम प्राप्त करते हैं, परिणाम स्वरूप दिव्य गुणों से आत्मा को सजाते भी हैं और अनेक आत्माओं की सेवा करने की क्षमता भी हमें प्राप्त होती है। इसलिए कहते हैं चार्ट आत्मा को स्मार्ट बनाता है, खजानों से मालामाल करता है। मुझे याद है मैं पहली बार मधुबन में 1973 में बाबा से मिलने आया था, उस समय केवल हिस्ट्री हॉल था। मुरली के बाद सभी पर्सनल मुलाकात बाबा से करते थे। जब मैं बाबा के सामने बैठा, बाबा ने मुझे दृष्टि दिया। फिर दृष्टि देने के बाद पहला महावाक्य उच्चारण किया, अगर ईश्वरीय जीवन में सदा आगे बढ़ना चाहते हो तो याद का चार्ट लिखते जाना। अब मैं एक साल का बच्चा था, चार्ट क्या होता है, कैसा लिखना होता है, ये भी मैं नहीं जानता था। अपनी टीचर को पूछा तो टीचर भी कहने लगी, आप जो कर रहे हो बहुत अच्छा कर रहे हो, कोई नहीं बताने के लिए तैयार था। जब मैं 76 में मधुबन में आया तो दादियों के क्लासेस के आधार पर और मुरलियों के आधार पर मैंने हर घंटे का चार्ट बनाया अपने आप। एक साल उसको मैंने अच्छी तरह से मेंटेन किया और उसके बाद हिस्ट्री हॉल में बाबा से पर्सनली मधुबन निवासी मिल रहे थे, दीदी दादी एक तरफ थी, बाबा बीच में बैठे थे गद्दी पर नीचे, मैं सामने बैठा था। तो बाबा ने मुझे दृष्टि दिया, टोली देने के लिए हाथ सामने भी किया लेकिन टोली नहीं दिया, हाथ पीछे किया। फिर बाबा ने मनमोहिनी दीदी जी की तरफ देखा, फिर बाबा कहने लगे, बच्ची इस बच्चे का याद का चार्ट अच्छा है और इसका नंबर पांडवों में आगे है। ये जो दो महावाक्य बाबा ने उच्चारण किए, मुझे इतनी खुशी हुई, इतनी खुशी हुई, ठिकाना नहीं था खुशी का। क्योंकि मेरे मन में एक संकल्प सदा चलता था कि मैं बाबा को याद करता हूं, मेरी याद बाबा तक पहुंचती है या नहीं, ये थोड़ा संशय मन में रहता था। लेकिन जब बाबा ने ये वरदान मुझे दिया तो वो संशय समाप्त हो गया और बेहद खुशी मुझे हुई। और उसके बाद आध्यात्मिक उन्नति का ग्राफ आगे ही आगे बढ़ता गया। तो मैंने ये 6 साल तक अच्छी तरह से मेंटेन करता रहा और उससे मुझे बड़ा भारी लाभ भी हुआ। तो चार्ट लिखने के लिए अलग अलग घंटे में अलग अलग एक्सरसाइज का कैसे प्रयोग किया जाता है वो मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। अमृत वेले, जैसे आंख खुलती है बाबा को हमने गुड मॉर्निंग करना है और पहला संकल्प सोमान का ही मन में लाना है। अमृत वेले शक्तिशाली योगाभ्यास करने का सीक्रेट यही है। मान लीजिए इधर उधर का संकल्प मन में आ गया तो अमृत वेले का मजा आप नहीं ले सकते हैं, क्योंकि जो सोमान का संकल्प होता है वो हमें ईश्वरीय नशे की अनुभूति कराता है और परिणाम स्वरूप मन और बुद्धि बाबा के पास परम धाम में हमें बिठाने का काम करती है। इसलिए दिन भर में चाहे कितना भी महत्वपूर्ण काम आपको करना पड़े उसके बारे में आपको सोचना नहीं है, पहला संकल्प सोमान का ही होना जरूरी है। बाद आप बाबा के साथ मधुर मिलन का आनंद लीजिए। 3:30 से 4 में ये काम करना है और 4 से 5 बाबा ज्ञान सूर्य हैं, मैं आत्मा भी मास्टर ज्ञान सूर्य हूं, बस सकाश ले रही हूं, स्वयं में शक्तियां ग्रहण कर रही हूं, आत्मा रूपी बैटरी चार्ज हो रही है। अमृत वेलात, शक्तियों का अमृत प्राशन करने की वेला, ज्ञान का अमृत मुरली सुनते समय मिलता है लेकिन अमृत वेले हमें शक्तियों का अमृत मिलता है। तो एक घंटा हमें बहुत अच्छी तरह से पावरफुल अभ्यास योग का करना है। योगाभ्यास के बाद आपको ऐसा अनुभव हो कि सचमुच मेरी आत्मा रूपी बैटरी चार्ज हुई है, मैंने बाबा से बहुत कुछ शक्तियां प्राप्त कर ली है, सफल अमृत वेला मैंने किया है, ऐसा अनुभव आपको होना जरूरी है। उसके बाद 5 से 6 एक्सरसाइज हमें करनी है। बाबा शांति के सागर हैं, मैं आत्मा मास्टर शांति के सागर हूं, शांति के सागर से शांति की किरणें ले रही हूं और सारे विश्व के ग्लोब पर अनेक आत्माओं पर शांति की किरणों की वर्षा कर रही हूं, अनेक आत्माओं को शांति की शीतलता की अनुभूति हो रही है, अनेक आत्माओं की दुआएं मुझे मिल रही हैं। ऐसा हमें बहुत अच्छी तरह से 1 घंटा अनुभव करना है, क्योंकि शांति दूत या शांति देव या शांति देवी ये हमें पावा ने टाइटल दिया है। शांति कहाँ मिलती है, कैसे मिलती है, ये हमें पता है। इसलिए शांति के सागर से शांति की किरणें हम लेते रहें और संसार की आत्माओं को बांटते रहें। बहुत अच्छी तरह से 1 घंटा इसका अभ्यास करना है। फिर 6 से 8 हमें मुरली सुनने के लिए खुद को तैयार करना है और मुरली मुरलीधर बाप की याद में सुनना है। गोल्डन चांस हमें मिलता है डबल कमाई करने का, मुरली सुनकर ज्ञान रत्नों से बुद्धि रूपी झोली भरना कर दूसरी कमाई हमारी होती है बाबा की याद के द्वारा आत्मा में शक्तियां भरना। योग युक्त मुरली सुनकर हम डबल कमाई कर सकते हैं। अभी हमें 2 in 1 और 3 in 1 का अभ्यास करना जरूरी है, समय थोड़ा है और थोड़े समय में हमने बहुत कमाई करना है, इसलिए बहुत योग युक्त मुरली सुनने होना चाहिए। मैंने बहुत मधुबन में इसका अभ्यास किया हुआ है। प्रकाश मणि दादी जी जब मुरली सुनाती थी तो जितना हो सके मैं बाबा की याद में ही मुरली सुनने का अभ्यास करता था। उस बड़ी सुंदर विधि है, जो भी हमारे टीचर हैं उनके पास जो हाथ में मुरली आई है वो मुरली कहां से आई है, मधुबन में बाजे मुरली, मुरलीधर बाबा ने कृष्ण के द्वारा अर्थात ब्रह्मा बा के मुख से ये मुरली बजाई है। तो मुरली सुनते समय ज्ञान सागर जो बाबा हैं, उनसे ज्ञान गंगा ब्रह्मा मुख से बहते बहते दीदी के मुख से बहते बहते आपके पास वो प्रवाहित होकर आई है। आप ज्ञान स्नान बहुत अच्छी तरह से कर रहे हैं। मैं आत्मा ज्ञान सागर की लहरों में लहरा रही हूं, तो कानों से मुरली सुन रहे हैं और मन के द्वारा बाबा की याद भी कर रहे हैं। बहुत खुशी आपको होगी, क्योंकि मुरली जब बाबा की याद में सुनते हैं उस समय हमें अति इंद्रिय सुख की अनुभूति होती है। उसका गायन भी शास्त्रों में गाया है, जब गोप गोपिया कृष्ण की मुरली सुनती थी तो वो अपने देह का भान भूल जाती थी और मुरली की तान पर वो रास रचाती थी। गायन हमारा संगम युग का है, हम जो बाबा के बच्चे गोप गोपियां हैं, मुरलीधर शिव बाबा की याद में मुरली जब सुनते हैं, मनवा मोर हमारा झूमने लगता है और अति ने हम नाचने लगते हैं। उससे बहुत सुंदर अतीन्द्रिय सुख का भी हमें लाभ मिलता है, अजीब सी खुशी भी हमें मिलती है और ज्ञान रत्न भी हमें मिलते हैं। तो ये 6 से 8 इसका बहुत अच्छी तरह से हमें अनुभव करना है। अभी 8 से 9 हमें स्वमान में रहने का अभ्यास करना है। हम बहुत महान आत्माएं हैं, सब रॉयल आत्माएं हैं। सतयुग त्रेता युग में हमने बहुत अच्छा रॉयल पार्ट बजाया, अभी साधारण बन चुके हैं। अभी साधारण से असाधारण बनने के लिए हमें स्वमान के सिंहासन पर बैठना जरूरी है, तभी आपको ईश्वरीय नशे की खुशी होगी और आपके आत्मा में वो ईश्वरीय नशा, ईश्वरीय मस्ती, अलौकिक मस्ती, अलौकिक खुमारी भरती जाएगी और रॉयल संस्कार आत्मा में स्वतः ही धारण होने लगेंगे। इसलिए बाबा ने हमें ये स्वमान के टाइटल दिए हैं। तो 1 घंटा हमने ये अभ्यास करना है, समान के सिंहासन पर डटे रहना है। माया चाहे कितना भी माया हमें सिंहासन से नीचे उतारने का प्रयास करेगी तो भी हमने ये सिंहासन को नहीं छोड़ना है, क्योंकि भगवान ने हमें ये सिंहासन दिया है और ये बहुत प्राप्तियां कराने वाला सिंहासन है। इसलिए हमने इस पर बैठे रहना है, डटे रहना है और एक अलौकिक मस्ती की अनुभूति हमें करना है। 8 से 9 वो अभ्यास करना है। हमें दिल से बाबा को शुक्रिया अदा करना है। देखो, उस दाता ने हमें इतना दिया है और इतना दे रहे हैं कि जिस हम 1 जन्म तो क्या अनेक जन्म भी रिटर्न करना चाहे तो भी नहीं कर सकते हैं। उसने हमें अलौकिक जीवन दिया, अलौकिक जन्म दिया, अलौकिक पालना दे रहा है और अलौकिक खजानों से हमें भरपूर कर रहा है। तो एकांत में बैठकर अगर हम बाबा को दिल से शुक्रिया अदा करेंगे, घंटों उसमें बीत जाएंगे और आपका बाबा के प्रति प्यार बढ़ता जाएगा। इसलिए ये एग्जाम हमें बहुत आनंद दिलाती है, क्योंकि बाबा का शुक्रिया अदा करने से घनिष्ठ प्यार हमारा बाबा के प्रति बढ़ता है और नजदीक हम बाबा से आते हैं। तो इसका भी आनंद हमें लेना है। फिर 10 से 11 मुरली का मनन चिंतन हमें 1 घंटा जरूर करना है। मुरली सुनते हैं उस समय ज्ञान का भोजन हम बुद्धि रूपी टिफिन बॉक्स में भर देते हैं। अब टिफिन बॉक्स में तो भोजन भर दिया, अब उसको खाना भी तो पड़ेगा ना भाई, उसको हजम भी तो करना पड़ेगा ना। इसलिए होशियार विद्यार्थी हमेशा मुरली के ज्ञान पर मनन चिंतन मंथन करते हैं। उससे क्या होता है, आत्मा में एक शक्ति मिलती है। जैसे योग का बल गाया जाता है, ऐसे ज्ञान का भी बल गाया जाता है। तो जैसे जैसे ये ज्ञान का बल हमारा बढ़ता है, 2 गिफ्ट हमें स्पेशल मिलती हैं। पहली गिफ्ट, एक अटूट आत्मविश्वास हमारा बढ़ता है और अदम्य साहस भी हमारा बढ़ता है। अगर माया की दुनिया में रहकर हमेशा विजयी स्थिति की अनुभूति करना है तो ये दो हथियार आपके पास होना जरूरी है। इसलिए मुरली का मंथन चिंतन हमें जाना है। और दूसरी बात, हर एक इंसान चाहता है हमारे जीवन में कुछ न कुछ नवीनता हमें मिले, तो नवीनता पाने का एक ही साधन है मुरली का मनन चिंतन करना। क्योंकि ज्ञान सागर से हमें नए नए ज्ञान रत्न मिलते हैं, बाबा से नई नई टचिंग्स मिलती हैं, उसके कारण उमंग उत्साह हमारा बढ़ता जाता है और बहुत हम आगे ही आगे बढ़ते जाते हैं। तो मनन चिंतन करना ये हमारी हॉबी हो, मनन करने वाले ही माया का पूर्णतया हनन कर सकते हैं, नामो निशान मिटा सकते हैं। उसकी सुंदर यादगार शास्त्रों में है, ब्रह्मा बाबा हर रोज मनन चिंतन करते थे, उनकी यादगार सागर में शेष शैया पर विष्णु जी लेटे हुए हैं, गीता ज्ञान का मनन चिंतन कर रहे हैं। उनका नाम क्या है? विष्णु। विष्णु आत्मा में अंश मात्र भी विकार का विष जहर नहीं है। उन्होंने माया को पूर्णतया जीत लिया है। ये ब्रह्मा बाबा के साथ हम बच्चों की भी यादगार गाई गई है। इसलिए हमें भी हर रोज मनन चिंतन करना ही है। 11 इस घंटे में हमने ये अभ्यास करना है, मैं पवित्रता का अवतार इस धरती पर अवतरित हो चुका हूँ, मैं पवित्रता की देवी हूँ, मैं पवित्रता का देवता हूँ, भगवान ने मुझे इस धरती पर भेजा है पवित्रता की सुगंध इस वायुमंडल में फैलाने के लिए। इसलिए ब्रह्मा बाबा के नाम से पवित्रता को ब्रह्मचर्य के रूप में गाया जाता है। ये ब्रह्मचर्य शब्द कहाँ से आया? ब्रह्मा बाबा के बहुत ऊंची पवित्रता की स्थिति के कारण उसका नाम ब्रह्मचर्य पड़ा है। वो हम सभी का बाप है। इतना बड़ा टाइटल, इतनी बड़ी स्थिति ऊंची हमारा ब्रह्मा बाप प्राप्त किया है, तो हम बच्चे भी कर सकते हैं। ऐसा सकारात्मक दृष्टिकोण हमारा हो और उसके आधार से पवित्रता की बहुत सुंदर स्थिति की अनुभूति हम सारे दिन भर में उस विशेष एक घंटे में करते रहें। बाबा ने पवित्रता का सुंदर ताज मुझ आत्मा को पहनाया हुआ है। जहाँ मैं जाता हूँ जाती हूँ पवित्रता के वाइब्रेशन फैलाती हूँ। और सकारात्मक उसको करने के लिए हमें आत्मा भाई भाई की दृष्टि को पक्का करना है, तो पवित्रता की और स्थिति हमारी निखरती जाती है। बाद में 12 से 1 खुदा दोस्त को हमने अनुभव करना है। खुदा को दोस्त के रूप में अनुभव करना है। जो भी सभा में बैठे हैं, बाबा के खास बच्चे बैठे हैं, हाँ या ना बोलिए। ये खास बच्चे किसको कहते हैं? खास का उल्टा क्या है? सखा। जो भगवान को सखा के रूप में, दोस्त के रूप में अनुभव करता है वो खास बच्चे कहलाते हैं। क्यों? क्योंकि हम अपने दिल का राज सबसे छिपाते हैं, जहां सखा मिल जाता है सारा राज खोल देते हैं। तो हमें बाबा को, खुदा को दोस्त अनुभव करना है। हमारी दोस्ती पवित्रता के आधार पर हुई है उनके साथ, उस दोस्ती को हमें बखूबी निभाना है। उनके साथ गाओ, नाचो, खाओ, बैठो, रास करो, मस्ती करो, तो उनके साथ दिल के समाचार की लेन देन करके हर खुद को सदा लाइट भी अनुभव करो। क्योंकि अंतिम समय हमें केवल हमारा खुदा दोस्त ही नंगे पैर दौड़कर मदद करने के लिए आएंगे, बाकी किसी में वो ताकत नहीं है अंतिम समय हलचल के वातावरण में मदद करने की। इसलिए अभी से हमारा गहरा कनेक्शन दोस्त के साथ होगा तो अंतिम समय हमें उनकी बहुत अच्छी मदद मिलती रहेगी। इसलिए इस संबंध को हमने बहुत अच्छी तरह से एंजॉय करना है। फिर एक से दो कर्म योगी फरिश्ता अनुभव करना है। मैं फरिश्तों की दुनिया से इस धरती पर, कर्म क्षेत्र पर आया हूँ केवल के लिए, तो न्यारे प्यारे होकर आप कर्म करेंगे और कर्म योगी आप बहुत अच्छी तरह से अनुभव करेंगे। क्योंकि मैं कर्म योगी फरिश्ता हूँ ये साक्षी होकर, साक्षी दृष्टा बनकर हम कर्म करेंगे, डिटैच होकर कर्म करेंगे, तो बाबा को साथी भी अनुभव अच्छी तरह से कर सकेंगे। इसलिए कर्म और योग साथ साथ होना जरूरी है। कर्म अलग और योग अलग ये ना हो, लेकिन दोनों बातें साथ साथ होगी तो हमारी डबल कमाई होगी। बाबा ने जो कहा है, मेरे बहादुर बच्चे वो हैं जो एक ही साथ दो काम कर सकते हैं, वो क्षमता उनके पास होती है। तो कर्म और योग ये दोनों काम एक साथ करने वाले हम सभी बाबा के बहादुर बच्चे हैं। इसलिए इसका अभ्यास हमने बहुत अच्छी तरह से करना है। अभ्यास करते 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 कर्म योग की स्थिति हमारी बढ़ती जाएगी, जिससे हम कर्मांति स्थिति के समीप पहुंचते जाएंगे। दो से तीन हमें क्या करना है, चार धाम मधुबन के करना है। सूक्ष्म रीति से आप दिल्ली से आए हैं या कहीं से भी आए हैं, आपका कर्म क्षेत्र वो है, लेकिन आपको सूक्ष्म रीति से आना है, फरिश्ता रूप में आना है और चारों धाम अच्छी तरह से करना है, उसका आनंद लेना है। शांति स्तंभ पर दो मिनट के लिए खड़े हो जाइए, उसका आनंद लीजिए, हिस्ट्री हॉल में जाइए, बाबा के रूम में जाइए, बाबा के झोपड़ी में जाएंगे, उससे क्या होगा, साकारी दुनिया में हम सभी का घर है मधुबन, उसके तरफ बुद्धि आपकी जुड़ जाएगी, उसके बाद सूक्ष्म वतन की ओर जाएगी, उसके बाद परम धाम की ओर बुद्धि हमारी जाएगी, क्योंकि हम रिटर्न जर्नी पर हैं। तो लौकिक से अलौकिकता को बढ़ाने के लिए ये एक्सरसाइज हमें बहुत मदद करती है। हर रोज आपको चार धाम करने हैं। ब्रह्मा बाबा की तपस्थली ये मधुबन बन चुका है, उनके तपोबल से हमें ये चार धाम करने का सौभाग्य मिल रहा है, इसलिए हम बहुत भाग्यशाली आत्माएं हैं, तो इसका हमें पूरा लाभ लेना जरूरी है। फिर 3 से 4 आपको स्वदर्शन चक्रधारी बनने का अभ्यास करना है, 5 स्वरूपों का अभ्यास अच्छी तरह से करना है। स्वदर्शन चक्र हमारी बुद्धि रूपी अंगुली में हमेशा घूमता रहेगा, तो माया दुश्मन हमारे सामने आएगी तो उसका गला कट जाएगा, अर्थात माया खत्म हो जाएगी। क्योंकि जब भी कोई अशुद्ध संकल्प चलता है तो सुदर्शन चक्र हम घुमाते हैं कि सतयुग में हम महान आत्माएं पवित्र आत्माएं थे, तो सतयुग त्रेता युग को याद करेंगे, संगम युग को याद करेंगे, तो ऑटोमेटिक अशुद्ध जो माया आती है, संकल्प आते हैं, वो खत्म हो जाते हैं। इसलिए 5 स्वरूपों का अभ्यास करने से सारे कल्प में स्वयं का दर्शन अर्थात आत्मा का दर्शन इस चक्र में बहुत अच्छी तरह से हम अनुभव करते हैं। उससे क्या होता है, निराकारी स्थिति हमारी निखरती जाती है। शरीर तो हमने हर एक जन्म अलग अलग लेते रहे, लेकिन आत्मा ने चक्कर लगाया, निराकारी आत्मा ने अलग अलग पार्ट बजाया, ये स्मृति रहेगी तो आप अपने देह से भी डिटैच होते जाएंगे और बहुत अच्छी तरह से इसका आनंद लेते रहेंगे। जैसे पंखा ऊपर चलता है तो हमें फ्रेश हवा देता है, तो सुदर्शन चक्र भी घुमाते हैं तो हम फ्रेश रहते हैं, उमंग उत्साह से भरपूर रहते हैं और पुरुषार्थ में आगे ही आगे बढ़ते जाते हैं। 4 से 5 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में हमने जाना है, सूक्ष्म वतन में हम बाबा के सभी सर्विसेबल बच्चे हैं, बाबा हमको वहाँ राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस लगी है सूक्ष्म वतन में। शिव बाबा ब्रह्मा बाबा के तन में फरिश्ता स्वरूप में बैठे हैं, मैं भी फरिश्ता स्वरूप में उस कॉन्फ्रेंस में जाकर बैठता हूँ बैठती हूँ, तो बाबा के साथ में बैठकर सेवा के कुछ प्लान कीजिए। उससे क्या होगा, बहुत अच्छी तरह से बाबा की कंपनी को भी आप एंजॉय करेंगे और सर्विस करने के नए नए भी प्लान आपको बाबा टच करते जाएंगे, क्योंकि सेवा का खिलौना हमें बाबा ने खेलने के लिए दिया है। उस खिलौने के साथ हमें खेलते जरूर रहना है, क्योंकि प्रजा जरूर बनाना है, राजा अगर बनना है तो प्रजा जरूर बनना है, उसके लिए सेवा ही हमारा धर्म और कर्म है। लेकिन सेवा के खिलौने के साथ खेलते खेलते हमने संपूर्णता के मंजिल पर पहुंचना है, ये भी लक्ष्य हमारा सदा रहे, इस पर हमने विशेष ध्यान देना है। इसलिए ये सर्विस का प्लान बनाने के लिए राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस का भी हमें अभ्यास करना है। आप साधारण नहीं हैं, बहुत वीआईपी बाबा के बच्चे हैं, सभी स्पिरिचुअल इंजीनियर हैं और सेवा करने के लिए हरेक को बाबा वतन में आह्वान करता है, बुलाता है, उसका हमें अनुभव भी करना है और आनंद भी लेना है। 4 से 5 हो गया, फिर 5 से 6 अशरीरी स्थिति का विशेष बैठकर हमें अभ्यास करना है, क्योंकि शरीर से हमारा बहुत लगाव होता है, इस बॉडी ने हमें कौड़ी बना दिया है, सोल समझते हैं तो गोल के तरफ हम आगे बढ़ते हैं, बॉडी समझने से पिछाड़ी में जाते हैं और अपने गोल से दूर हो जाते हैं। इसलिए देह में रहते हुए विदेही स्थिति का अभ्यास बढ़ाने की तपस्या हमें करना बहुत जरूरी है, क्योंकि यही अभ्यास लंबे समय का होना जरूरी है। क्योंकि अंतिम पेपर हम यूनिवर्सिटी में बैठे हुए हैं, अंतिम पेपर हमें देना है। अंतिम पेपर कौन सा है? सिचुएशन कोई भी हो, परिस्थिति कोई भी हो, हमने एक सेकंड में देह से न्यारा होना है और उसी सेकंड बाबा का प्यारा अर्थात बाबा की याद में टिकना है। ये अंतिम पेपर में हमने बहुत अच्छे मार्क्स लेने हैं, इसलिए लंबे समय का विदेही स्थिति का अभ्यास बहुत जरूरी है। इसलिए आप यहाँ स्थान पर मधुबन में पहुंचे हुए हैं, ये विश्व के ग्लोब पर सबसे पावरफुल स्थान ये बाबा का घर है। यहाँ आप विदेही स्थिति की तपस्या करके बहुत सुंदर अनुभव की पूंजी को बढ़ा सकते हैं। इसलिए एकांत में बैठकर अशरीरी स्थिति का आनंद हमें जरूर लेना है, क्योंकि जितना देह से न्यारा उतना ही बाबा का प्यारा अनुभव करते हैं। जितनी बॉडी की कंपनी भूलते हैं उतनी गॉड की कंपनी हमें मिलती है। तो अभ्यास करते करते 100% हमें बॉडी को भूलना है, 100% गॉड की कंपनी बाबा की कंपनी हमें मिलती जाएगी। इसलिए जब बिंदु समझते हैं तो सिंधु की याद आती है, बाबा जो सागर है सिंधु है उसकी याद ऑटोमेटिक आता है। जब देखते हैं अंदर बैठी हुई आत्मा तो याद आता है ऊपर बैठा हुआ परमात्मा। इसलिए हमें आत्मा का दर्शन करते रहना है तो खुदा का दर्शन ऑटोमेटिक हमें होता रहता है। फिर 7 से 8, 6 से 7, 9 शाम का समय होता है, हमने लवलीन स्थिति का अनुभव करना है, बाबा के प्यार के सागर में डूब जाना है। लीन नहीं तो आत्मा क्लीन नहीं बन सकती है। हमारे पास परमात्मा के प्रति असीम प्यार है, इसलिए प्यार के सागर के लहरों में लहराने से अल्पकाल का आनंद हमें जरूर मिलता है, लेकिन जब प्यार के सागर में लव में लीन हो जाते हैं, समा जाते हैं, खो जाते हैं, शिवमय बन जाते हैं, जब कंबाइंड हो जाते हैं, तो प्यार के सागर के तले में हीरे माणिक मोती होते हैं, मिलते हैं बहुत सुंदर गहन अनुभूतियों रूपी। इसलिए हमें बाबा के प्यार में लीन हो जाना है, इसका आनंद हमें बहुत अच्छी तरह से बढ़ाते जाना है। क्योंकि नमा शाम के समय वातावरण बहुत सुंदर होता है, उस समय एकाग्रता का अभ्यास सहज होता है, इसलिए लवलीन स्थिति की अनुभूति हमें सहज हो सकती है। इसलिए इस टाइम का हमें जरूर लाभ लेना है। और 7 से 8, बीज रूप स्थिति की अनुभूति हमें करना है, पावरफुल योग का अभ्यास करना है। क्योंकि बाबा ने स्पष्ट कह दिया है, अभी साधारण योगाभ्यास करने का समय समाप्त हो चुका है, अभी जो समय चल रहा है वो बीज रूप स्थिति का शक्तिशाली स्थिति का करने का चल रहा है, क्योंकि हम हर रोज योग का अभ्यास करते हैं, रोज मुरली सुनते हैं, फिर भी जब हम कारोबार में आते हैं थोड़ी कभी गुस्सा आता है, कभी फीलिंग आती है, कभी रोब आता है, अर्थात विकारों के अंश वंश अभी भी आत्मा में है, जिनको हमने उखाड़ के फेंकना है। घर जाने के पहले मुझ हीरे को बेदाग हीरा बन के जाना है, जो दाग मेरी वैल्यू को घटाता है उस दाग को मैंने मिटा कर ही रहना है। इसलिए बीज रूप स्थिति का अभ्यास हमें बढ़ाते जाना है। शरीर रूपी वृक्ष का बीज मैं आत्मा हूँ, मनुष्य सृष्टि रूपी कल्प वृक्ष का बीज बाबा है, परम धाम में हम बाबा के साथ बैठे हैं, और बाबा बुद्धि को, बुद्धि से बाबा को देख रहे हैं, मन बाबा की याद में संकल्प कर रहा है, संकल्प करते 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 लास्ट संकल्प ऐसा आएगा कि मैं आत्मा शक्तियों के सागर से अथाह शक्तियां स्वयं में ग्रहण कर रही हूँ, केवल इसकी अनुभूति हो, संकल्प भी नहीं, निर्संकल्प समाधि इसको कहते हैं। बिल्कुल ज्ञान सूर्य बाबा से यथाशक्तियां मुझ आत्मा में आ रही हैं, मेरी एनर्जी लेवल राइज हो रही है, ऐसी बहुत सुंदर अनुभूति को बीज रूप स्थिति की अनुभूति कहते हैं, शक्तिशाली योग की अनुभूति कहते हैं। इसलिए हमने मधुबन निवासियों ने एक बार बाबा से प्रश्न पूछा था कि बाबा मेरा योग शक्तिशाली है या नहीं, कैसे पता चलेगा, शक्तिशाली योग की क्या निशानियां हैं। तो बाबा ने कहा था शक्तिशाली योग की दो निशानियां हैं। पहली निशानी, शक्तिशाली योग में योग अग्नि के रूप में अनुभव होता है, उस अग्नि में मेरे विक्रम भस्म हो रहे हैं, ऐसी अनुभूति हमें एक तरफ होती है और दूसरे तरफ हल्केपन की और खुशी की अनुभूति होती है। हल्केपन की क्यों अनुभूति होती है, क्योंकि विकर्मों का बोझ घटता जाता है। खुशी की अनुभूति क्यों होती है, क्योंकि हम अपने संपूर्णता के मंजिल की ओर आगे ही आगे बढ़ते हैं, इसलिए खुशी की अनुभूति होती है। तो ऐसा हमने बीज रूप स्थिति के अभ्यास को बढ़ाते जाना है। फिर 9 से 10, 8 से 9 हमने कोई ना कोई गुण को जरूर मनन चिंतन करके जीवन में धारण करने का पुरुषार्थ करना है। हमारा लक्ष्य क्या है, सर्वगुण संपन्न बनना। 36 गुणों की माला मेरे गले में मुझे पहनना है। कोई भी गुण अगर कम है उसको हमने चेक करना है अच्छी तरह से, गहराई से जाकर, और उस गुण को जीवन में धारण करने का पूरा पुरुषार्थ करना है, क्योंकि हमें गुणवान बनना है और गुणों का दान करना है। ज्ञानियों की सेवा ज्ञान देकर हम नहीं कर सकते हैं, गुणों का दान देकर हम ज्ञानियों की, बाबा के बच्चों की सेवा कर सकते हैं। इसलिए हमारा चेहरा दिव्य गुणों से सजा हुआ हो, जो दिव्य गुणों की ज्वेलरी बाबा ने दी है, आभूषण हमें दिए हैं, वो हमने बुद्धि रूपी तिजोरी में नहीं रखना है, हमने उसको जीवन में धारण करना है, पहनना है, अपनाना है। इसलिए इस घंटे में इसका अभ्यास करना है। और 9 से 10 बाबा को हमने सारे दिन भर का चार्ट देना है। अभी देखो, चार्ट आपने लिखा, लेकिन चार्ट में आपको कितनी सफलता मिली इसकी सूक्ष्म चेकिंग जरूर करना है। अब एक घंटे में 60 मिनट होते हैं, उसमें आपने मन बुद्धि को एक्सरसाइज दिया है, अशरीर स्थिति का अभ्यास करो या लवलीन स्थिति का अभ्यास करो, तो कितना मिनट मैं आत्मा उस स्थिति में स्थित रही, इसकी सूक्ष्म चेकिंग हमें करते जाना है। हमें झूठ इसमें तो कुछ करना नहीं है, किसी को झूठा समझकर, झूठा बोलकर, झूठा चार्ट लिखने से हमें कुछ मिलना नहीं है, बाबा सब जानते हैं। तो धीरे धीरे इसमें एक्यूरेसी बनती जाएगी, एक्यूरेसी बढ़ती भी जाएगी, तो उससे क्या होगा, आप हर घंटे लिखते जाओ, भाई एक घंटे में मैंने 10 मिनट बाबा को याद किया, 10 मिनट मैंने 15 मिनट इस एक्सरसाइज में सफलता मिली, ऐसा आपको चेकिंग भी करते जाना है। अभी धीरे धीरे ये अलग अलग एक्सरसाइज करने के बाद मन और बुद्धि पर आपका पूरा नियंत्रण और अनुशासन होता है, उसके बाद आपको केवल योग का चार्ट मेंटेन करना है, केवल याद का चार्ट। मैं बाबा को बुद्धि के द्वारा कितना समय देखा, मन कितना समय बाबा की याद में रहा, ये चार्ट लिखते जाना है। और उसको धीरे धीरे, पहले बार आप 2 घंटा करेंगे, बाद में उसको बढ़ाना है 3 घंटा करेंगे, और जिस समय 8 घंटा आपका याद का चार्ट होगा, आपको इतनी खुशी होगी, इतनी खुशी होगी जिसका ठिकाना नहीं होगा। आपको लगेगा मैं बहुत बड़ा युद्ध जीत के आया हूँ, इतनी मस्ती, इतनी खुशी आपको होगी। इसलिए बाबा के सामने बैठना है और सारे दिन का चार्ट हमने बाबा को देना है। मान लीजिए छोटी मोटी गलती आपसे हुई भी है, तो बाबा को हमने वो बता देना है कि ईमानदारी से, और वो रिपीट दूसरे दिन ना होवे, उसके लिए बाबा से प्रॉमिस भी करना है, प्रतिज्ञा भी करना है। क्योंकि बाबा से जब प्रॉमिस करते हैं, तो बाबा उसको निभाने के लिए हमें एक्स्ट्रा शक्ति भी देते हैं, इसलिए इसका भी हमें लाभ लेना है और बाबा को सच्चे दिल से चार्ट बताना है और खुद को हल्का रखना है। जो भी दिनचर्या है बाबा को बता दी, आप बिल्कुल लाइट हो चुके हैं। रात गई बात गई, उस रात में सोते समय बाबा को देखने देने से दूसरे दिन पर उस बात का असर नहीं होना चाहिए। अगर इस दिन हमने आज कोई गलती किया, तो दूसरे दिन पर उसका असर नहीं होना चाहिए। इसके लिए ये विधि बहुत अच्छी है। अभी 10 माना बस, इस जानकी दादी जी का स्लोगन था। तो हमें 10 बजे बाबा की गोदी में विधि पूर्वक सोना है। विधि पूर्वक बोल रहा हूं मैं, विधि कैसी है, बहुत सुंदर विधि है। उस विधि को अगर आप अपनाएंगे, कभी भी आपको इधर उधर के स्वप्न नहीं पड़ेंगे, बहुत अच्छी तरह से साउंड स्लीप आएगी, और साउंड स्लीप से 4-5 घंटे नींद मिलने के बाद आप स्वयं को फ्रेश अनुभव करेंगे। तो विधि ये है, मेरी माँ ब्रह्मा माँ, उसने बहुत सुंदर लाइट का बेड बने मेरे लिए बना के रखा है। मैं छोटा बच्चा या बच्ची बनकर माँ के पास दौड़ के जाता हूँ, माँ मुझे गले लगाती हैं और कहती है ये बेड मैंने आपके लिए बनाया है, लाइट का बेड। तो ब्रह्मा माँ बैठती है, मैं छोटा बच्चा या बच्ची के रूप में माँ की गोदी में सिर रखता हूँ, पैर मेरे इधर हैं, तो ब्रह्मा माँ मुझे जेंटल मसाज, स्पिरिचुअल मसाज देती हैं, उसके कारण मेरी सारे दिन भर की थकावट मिट जाती है। और बाबा के साथ माँ के साथ रू रिहान करते 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 गुड नाइट बाबा, आंखें बंद हो गई और बाबा की गोद में सो गए। जैसी आंख खुलेगी आप गुड मॉर्निंग करेंगे, तो बाबा ने कहा ऐसे विधि पूर्वक बोलेंगे सोएंगे तो वो समय आप याद की चाट में भी काउंट कर सकते हैं, ये भी बाबा ने कहा है। तो ये विधि हमें अपनाना है, बहुत आपको मदद करेगी ये विधि। नहीं तो इधर उधर के बहुत संकल्प स्वप्न हम देखते हैं, उसके कारण मन बहुत भागता है, तो नींद के बाद भी हमें फ्रेशनेस की अनुभूति नहीं होती है। शरीर ये मशीनरी है, तो इस मशीनरी को फ्रेशनेस होना, अनुभव करना बहुत जरूरी है, क्योंकि नींद में हमारे शरीर में लैक्टिक एसिड तैयार होता है। उस लैक्टिक एसिड से क्या होता है, हमारे बॉडीज के जो भी टिश्यूज होते हैं, सेल्स होते हैं, वे एकदम रिलैक्स हो जाते हैं, हम फ्रेश अनुभव करते हैं, और दूसरे दिन अपनी पाड़ बजाने के लिए हम तैयार हो जाते हैं। इसलिए साउंड स्लीप के लिए विधि पूर्वक सोना बहुत जरूरी है। तो इस तरह से हमने चार्ट रखना है। कभी क्या होता है, चार्ट अच्छा होता है, कभी नहीं अच्छा होता है, फिर भी हमने लिखना है। उससे क्या होता है, अटेंशन की पावर हमारी बढ़ती जाती है। तो आत्मा की अटेंशन की पावर, ये बहुत बड़ी पावर है, इसको हमने बढ़ाते जाना है, ठीक है ना। तो 8 घंटा याद का चार्ट बनाएंगे तो आपको इतनी खुशी होगी, इतनी खुशी होगी, बात मत पूछो। और आप बेहद की सेवा, मनसा सेवा भी सफलता पूर्वक कर सकेंगे। ये भी बहुत बड़ी उपलब्धि उस योगाभ्यास की है, ठीक है। ओम शांति। अभी हम चंद घड़ियों के लिए बहुत पावरफुल योग का अभ्यास करने जा रहे हैं। एक बार जोरदार तालियां बजाएंगे, सारे जोरदार बजाएंगे अच्छी तरह से। सीधा बैठेंगे, अलर्ट और एक्टिव होके बैठेंगे, ओम शांति। ईश्वरी रूपी चैतन्य दीपक में मैं आत्मा रूपी चैतन्य ज्योति जग मग रही हो, मोज आत्मा रूपी चैतन्य ज्योति से दिव्यता का प्रकाश दिव्यता की रोशनी चारों ओर फैल रही है। मौज आत्म ज्योति के चहुओं सुंदर आभा मंडल दिव्य प्रकाश का औरा अनुभव हो रहा है। भगवान की नजरों में आई हुई भाग्यवान आत्म ज्योति हूँ। मैं आत्मा रूपी चैतन्य ज्योति, देह रूपी चैतन्य दीपक से न्यारी होकर, बुद्धि रूपी विमान में बैठकर, फरिश्तों की दुनिया की ओर उड़ती हुई जा रही हूं। इस साकारी दुनिया से पार, सूक्ष्म वतन में फरिश्तों की दुनिया में पहुंच गई हूं, जहां चारों सफेद सफेद दिव्य प्रकाश प्रकाश है। मुझ आत्म ज्योति ने दिव्य प्रकाश पुंज की चमकीली फरिश्ता स्वरूप की ड्रेस धारण कर ली है। कितनी सुंदर हल्की फुल्की ड्रेस है यार, फरिश्तों के शहंशाह प्यारे ब्रह्मा बाबा अपने दिव्य और भव्य संपूर्ण फरिश्ता स्वरूप में मेरे समक्ष विराजमान है। मेरे अति प्यारे, अति मीठे शिव बाबल भी उनके भ्रुकुटी में चमकते हुए दिखाई दे रहे हैं। स्नेह के सागर बाबा मुझ फरिश्ते को अति स्नेह भरी दृष्टि दे रे, मैं फरिश्ता बाबा की दृष्टि का आनंद लेते लेते बाबा की बाहों में समा गया हूं। परम सुख की अनुभूति हो रही है। मैं आत्मा रूपी चैतन्य ज्योति फरिश्ता स्वरूप की ड्रेस को छोड़कर बुद्धि रूपी विमान में बैठकर चली दिव्य ज्योति धाम की ओर उड़ती हुई जा रही हूं। ओहो, निराकारी दुनिया में पहुंच चुकी हूं, जहां चारों ओर सुनहरी लाल ही लाल दिव्य प्रकाश प्रकाश है। शांति ही शांति, परम शांति है। ओहो, मेरे प्राणों के प्राण सत्यम शिवम सुंदरम प्यारे शिव पिता, मुझ आत्म ज्योति के समक्ष विराजमान है। मैं आत्म ज्योति बाबा की सुंदर छवि को दिव्य चक्षु से निहार रही हूं, उनकी सुंदरता का आनंद लूट रही हूं। बाबा ज्ञान सूर्य है, आध्यात्मिक शक्तियों की अथाह सागर है। इस साकारी दुनिया के सूर्य से कई गुना शक्तिशाली है। शक्तियों के सागर ज्ञान सूर्य शिव पिता से अत्यंत शक्तिशाली किरणों की बरसात निरंतर मुझ आत्म ज्योति पर हो रही है, होती ही जा रही है। मैं आत्म ज्योति ज्ञान सूर्य शिव पिता से अनंत शक्तियां स्वयं में ग्रहण कर रही हूं, ग्रहण करती ही जा रही हूं। योग की प्रखर अग्नि में मेरे पूर्व जन्मों के पाप भस्म हो रहे हैं। मैं आत्म ज्योति स्वयं को एकदम लाइट और खुशी से भरपूर अनुभव कर रही हूं। सचमुच मेरे जीवन के सबसे खुशनुमा पल है यह, जो मैं आत्म ज्योति डायरेक्ट ज्योति सागर भगवान के सानिध्य में स्वयं को अनुभव कर रही हूं। वार्य में वहां मेरे बाबा, वहां मेरा भाग्य, शक्तियों से भरपूर आत्म ज्योति, बुद्धि रूपी विमान में बैठकर निराकारी दुनिया से उड़ती हुई साकारी दुनिया की ओर वापिस आ रही हूँ। और इस साकारी शरीर रूपी चैतन्य दीपक में विराजमान हो चुकी हूँ। मौज शक्तिशाली आत्म ज्योति से शक्तियों की किरणें चारों फैल रही है। ओम शांति शांति शांति।